वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Canto chapter 6th, text number 27th. एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यात्मलात्मनः कालः प्रादुर्भूत्काले एवं दस कृष्ण मते है। Someone is getting the book? Hindi? Or no, no one is even trying. Krishna Mateh, one who is fully absorbed in thinking of Krishna, Brahman, O Vyasadev, na, not, asaktasya, of one who is attached, amal atmanaha, of one who is completely free from all material dirt. Kalaha, death. Pradurbhut, become visible. Kale, in the course of time. Tadit, lightning. Saudamani, illuminating, yatha, as it is. Anuvada tatpari Srila Prabhupada dvara Srila Prabhupada ki. He Vyasadev, he Brahman, nishchit samay aane par मैंने जिसकी समस्त भौतिक आसक्तियां निवृत्त हो चुकी थी और जो अखंड श्री कृष्ण स्मरण में तल्लीन था, मृत्यु से साक्षात्कार किया मैंने। कौन कह रहे? नारद मुनि कह रहे। नारद एवं व्यास का वार्तालाप या संवाद जो बद्रिकाश्रम में हो रहा है, तो नारद मुनि कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत एवं उसका प्रकाश एक साथ कौंध गए हो, मैं भौतिक शरीर से पृथक हो गया था। अनुवाद को फिर से सुन ही लीजिए। हे व्यासदेव, हे ब्रह्मन, निश्चित समय आने पर मैंने जिसकी समस्त भौतिक आसक्तियां निवृत्त हो चुकी थी और जो अखंड श्री कृष्ण स्मरण में तल्लीन था, जो मैं नारद मुनि, मृत्यु से साक्षात्कार किया, मतलब मृत्यु आधम का, मृत्यु आ पहुंचा, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत एवं उसका प्रकाश एक साथ कौंद गए हो, बिजली जब चमकती आकाश में उसका आवाज और प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश एक ही साथ उसको देखा जाता है, तो वैसे ही नारद मुनि अपना अनुभव कह रहे हैं, मैं भौतिक शरीर से पृथक हो गया था, श्री कृष्ण में संपूर्ण रूप से तन्मय का अर्थ है, या नारद मुनि कह रहे कि मैं तन्मय था, मैं तल्लीन था, तत्लीन तल्लीन, तत् कौन है, ओम तत् सत्, तत् मतलब वह तत्वमसी, मायावादी कहते तत्वमसी, तत् त्वमसी, वह तुम हो, वह तुम ही तो वही हो, मायावाद हो गया, अद्वैतवाद हुआ, यानी हमें या तत् से तात्पर्य है, तत् मतलब भगवान, तो तत् लीन मतलब भगवान में लीन, तल्लीन जो शब्द है आप सुने पढ़े होंगे, तल्लीन भक्त तल्लीन होता है, सुना शब्द तल्लीन, तो तल्लीन मतलब तत् जमा लीन, तत् और लीन से दो शब्दों से एक शब्द बन गया, हो गया तल्लीन, तो तत् भगवान में लीन, या तो मायावादी ज्योति में ज्योत मिलाने के बाद ज्योति में लीन, ब्रह्म ज्योति में, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना, या हमें भगवान से मतलब है, या नारद मुनि बोल रहे हैं उनका वचन है, तो वो ब्रह्मलीन नहीं होंगे, जय ओम विष्णुपाद परमहंस, नित्य नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रविष्ट, भगवान के भक्त भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं, यह भगवान भी है और भक्त भी रहेगा, आप भी रहोगे, यानी कि आप और भगवान एक हो गए, फिर लीला कैसे होगी, भगवान है भक्त है तो लीला होगी, तो श्री कृष्ण में संपूर्ण रूप से तन्मय या तल्लीन का अर्थ है, प्रभुपाद इसका अर्थ कहिए या परिभाषा डेफिनेशन यहां कह रहे हैं, भौतिक आसक्तियों एवं आकर्षणों से निवृत्ति, मतलब तल्लीन हो गया, भौतिक आसक्तियां, भौतिक भौतिक समझ, भौतिक पंच महाभूतों से बना हुआ है ये संसार, किसे बना है कहो कहो, किसे बना है, पंच महाभूतों से, पांच भूतों से, पांच भूत कौन कौन से है, फाइव ग्रेट एलिमेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये भी एक कहने का ढंग है, और भूमि अपो नल वायु खम, भगवान श्री कृष्ण कहे गीता में, तो इन पंच महाभूतों से बना हुआ संसार, उसको भौतिक संसार या प्रपंच कहते हैं, प्रपंच प्रपंच, पांच भूतों से तत्वों से बना हुआ संसार, तो इस संसार में भौतिक आसक्तियों, तो संसार में आसक्ति और संसार के आकर्षण, संसार के विषयों की ओर आकर्षण, इससे जो निवृत्त है, निवृत्ति रिटायरमेंट या मुक्ति, उसी को कहा है या वही बन सकता है तल्लीन भगवान में, या भगवान में आकृष्ट हो सकता है। जैसे समृद्धशाली व्यक्ति तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित नहीं होता, समृद्धशाली कोई बड़ा अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, कोई छोटी छोटी बातें हैं उसकी ओर आकृष्ट नहीं होता, उसे लालायित नहीं होता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो नित्य भगवत धाम को अपना अगला निवास निर्वाचित कर चुका है, वह पूर्ण प्रज्ञावान एवं आनंदमय है। अतः वह तुच्छ सामान्य भौतिक पदार्थों की ओर सतृष्ण दृष्टि से नहीं देखता। ये हिंदी भी थोड़ा कठिन ही है, अब हिंदी सुनना चाहते थे। पांडित्य की आवश्यकता है क्योंकि उसके लिए खिलौने की भांति है, परम सत्य की छाया की भांति है, इसका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। तो इस हिंदी को ही पुनः समझाना होगा आपको। तो यह श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का भक्त उसी प्रकार भगवान का भक्त उसने क्या किया है, जिस भक्त ने अपना अगला आवास निर्वाचित कर चुका है, मैं इस यहां के बाद इस शरीर को जब त्याग दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, मुझे कहाँ जाना है, भगवत धाम में जाके निवास करना है, ऐसा जिसने इसका विचार निर्धारित या निश्चित हो चुका है, मैं और कहीं सेटल नहीं होऊंगा, रहूंगा अगले जीवन में तो कहाँ, भगवान के धाम। वह पूर्ण प्रज्ञावान एवं आनंदमय है, वह तुच्छ सामान्य भौतिक पदार्थों की ओर, तो ऐसा भक्त श्री कृष्ण भक्त इस संसार के जो पदार्थ है, इसको श्री प्रभुपाद देखे तुच्छ और सामान्य साधारण पदार्थ, जिसको हम बहुत महत्व देते जरूर है संसार में, लेकिन है वे कैसे, शास्त्र चक्षुषः, शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे या आचार्यों की दृष्टि से देखेंगे तो इस संसार की जो वस्तुएं है, पदार्थ है, कैसे है, एक तो सामान्य है और कैसे तुच्छ है, तुच्छ, जिसकी ओर क्या देख के क्या करना चाहिए, थूकना चाहिए, तुच्छ। ग्रहम यदि सुखम ही तुच्छम, प्रहलाद महाराज का है। ग्रह मेधियों का जो सुख है, वैसे वो सुख कैसा है? तुच्छम। क्योंकि उसके लिए वे खिलौने की भांति है, कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं है। कोई सचमुच स्त्री का रूप और फिर उसी का खिलौना बना लिया, वैसा ही प्रतिकृति सिमिलर, तो उस खिलौने का क्या कोई महत्व नहीं है? खिलौने का कौन देखेगा जब सचमुच स्त्री है या जीवित स्त्री है? तो फिर उस लकड़ी के बनाए हुए खिलौने को कौन देखेगा, कौन चूमेगा उसको, कौन गले लगाएगा उसको? सेम थिंग। तो कृष्ण भक्त को भगवान या भगवत धाम ये जीवित है, रियल है, सच्चा है। और ये संसार के जो भी पदार्थ है या व्यक्ति भी है, वे तुच्छ है, खिलौने जैसे है, निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। आप समझ रहे हैं? परम सत्य की छाया की भांति है, जिसका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। तो भगवान गीता में कहे ही है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। ये संसार कैसा है? तालाब के किनारे कोई पेड़ है, एक तो पेड़ खड़ा है जिसकी शाखाएं ऊपर है, मूल नीचे की ओर है, नीचे है, जमीन में है। लेकिन उसकी जो छाया आप देखते हो, प्रतिबिंब आप जल में देखते हो, तालाब में, सरोवर में, तो कैसा दिखाई देता है? ऊर्ध्वमूलम, उसका मूल ऊपर, मतलब उल्टा। सच्चा सही पेड़ तो सुलटा है, उसकी छाया उल्टी है, सुलटा उल्टा। तो मूल ऊपर जो छाया में, उसकी शाखाएं अधः, मतलब नीचे की ओर शाखा। तो ये संसार आध्यात्मिक जगत। यस कृष्ण बलराम की। तो भगवत धाम का बिल्कुल उल्टा, भगवत धाम की तुलना में ये जगत बिल्कुल उल्टा है। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति के यही लक्षण है, तथा निश्चित अवधि के व्यतीत होने पर जब भक्त पूर्ण तैयार होता है, अकस्मात देह परिवर्तन घटित होता है। तो वह फिर वो समय आ ही जाता है, जो भी साधारण व्यक्ति है या कृष्ण भक्त भी है, जिसने जन्म लिया है, उसको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? खाना सोना पड़ता है। एक बात निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? इंडिया में तो यही नियम है, मॉरिशस में ऐसा कोई है? जन्म लिया और मरा नहीं, अमेरिका में भी यही नियम है। घर गरीब के लिए, श्रीमान के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, काले लो, गोरे लो, सभी के लिए क्या करना पड़ता है? मरना जरूर पड़ता है। जातश्य ही ध्रुवम मृत्यु, यही सामान्य मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है मृत्यु क्या है? प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस। मृत्यु कैसा है? वर्ल्ड फेमस, सारे संसार में मृत्यु का नाम है। सारे संसार भर में मृत्यु से लोग डरे हैं, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। विशुद्ध भक्त के लिए, विशुद्ध मतलब शुद्ध है, अधिक शुद्ध, शुद्ध भक्त, विशुद्ध भक्त के लिए देह परिवर्तन ठीक वैसे ही होता है जैसे विद्युत की कौंध एवं प्रकाश की व्याप्ति एक साथ घटित होती है। तो बिजली की चमक और आवाज, ध्वनि और प्रकाश एक ही साथ प्रकट होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि भक्त अपने प्राकृत शरीर का त्याग एवं अप्राकृत शरीर का ग्रहण भगवान की इच्छा के इच्छा से एक साथ करता है। तो भगवान के भक्त की मृत्यु जब होती है तो क्या होता है? भौतिक शरीर तो समाप्त हो गया, और उसी के साथ उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। एक शरीर को उसने त्याग दिया तो शरीर की मृत्यु हुई, ऐसा हम कहते हैं। वो शरीर में प्राण नहीं रहा तो अलग हुआ, उसका आत्मा अलग हुआ, तो आत्मा का भी, आत्मा का अपना रूप है, आत्मा का रूप है, आत्मा के पैर है, आत्मा के हाथ है, आत्मा का मुख है, आत्मा बोल सकता है, आत्मा चल सकता है, आत्मा सारे कार्यकलाप संभव है आत्मा के लिए। शरीर से अलग होता है आत्मा, तो दो शरीर हो गए, एक भौतिक शरीर, फिर उसको तो ले जाएंगे घाट पर, ले जाएंगे, क्या कहते हो, राम नाम सत है, राम नाम सत है, तो ढो के ले जा रहे शरीर को, मृत देह को, इतने में उस अगर वो भक्त है तो उसकी आत्मा भगवान के धाम जा रही है। तो एक शरीर समाप्त हुआ और दूसरा शरीर उस आत्मा ने स्वरूपेन व्यवस्थिति ही, मुक्ति का अर्थ भी यही है, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप में, इसकी ओर ध्यान दीजिए शब्द की ओर, कैसा रूप? स्वरूप, स्व मतलब क्या? खुद का, अपना, निजी स्वरूप, स्वरूपेन व्यवस्थिति, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थिति। इसलिए कहा कहा गया है कि भक्त अपने प्राकृत शरीर का त्याग एवं अप्राकृत शरीर का ग्रहण भगवान की इच्छा से एक साथ करता है। उसमें कभी आगे पीछे नहीं होता। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी विशुद्ध भक्त को कोई लौकिक आसक्ति नहीं होती। भौतिक लौकिक एक ही बात है, लोक इस लोक की आसक्ति, उसको लौकिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति, लौकिक आसक्ति। भगवान का धाम कैसा है? अलौकिक है। भगवान का धाम कैसा है? अलौकिक। अ मतलब नहीं, कैसा नहीं है? लौकिक नहीं है, वह अलौकिक। ये संसार लौकिक है और वह संसार भगवान का धाम अलौकिक है। तो यह श्रील प्रभुपाद लिखे हैं यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी विशुद्ध भक्त को कोई लौकिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि जैसे अग्नि के संसर्ग से लोहा अग्नि वर्ण हो जाता है, उसी भांति भक्त भी अप्राकृत संस्पर्श से अप्राकृत ही हो चुका होता है। क्या समझे आप? अंग्रेजी प्रवचन होता तो अच्छा होता, कुछ तो श्रील प्रभुपाद सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि भगवान के भक्त की स्थिति थोड़ी भिन्न होती है संसार के लोगों से, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की सेवा में तल्लीन होता है, तो वैसा उसका शरीर भी एक दृष्टि से लौकिक नहीं रहता, भौतिक नहीं रहता। उसका भी आध्यात्मिकीकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाता है इस शरीर का भी। इसलिए महात्माओं के जो शरीर है, सन्यासियों का शरीर है, उनको समाधि में स्थापित करते हैं, उसको अग्नि में संस्कार नहीं किए जाते, उनके शरीर शरीर साधारण नहीं है। भगवान की सेवा में तल्लीन थी उनकी आत्मा, तो उस आत्मा के कृष्ण कॉन्शियस और वो सेवा के संपर्क में आया हुआ शरीर भी कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। जैसे अग्नि में जब लोहा रखा जाता है तो थोड़ी देर में वो लोहा लाल भड़क लाल बन जाएगा, और उसको आप अग्नि से अलग करके अगर लकड़ी को स्पर्श कराओगे तो लकड़ी को जला देगा। मतलब अग्नि के संसर्ग से, संपर्क से वो लोहा भी अब अग्नि जैसा कार्य करने लगता है। है तो लोहा, लेकिन अब वो साधारण लोहा नहीं रहा। अग्नि के संपर्क में आने से लोहा भी अग्नि जैसा कार्य करता है। वैसे ही भगवान के भक्तों का जो शरीर है वो भी साधारण नहीं रह जाता, वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन, तात्पर्य समाप्त होता है। नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत्क काले तड़ि सौदा मणि मिनी यथा सौदा मणि सौदा मणि सौदा मिनी या लिखा है, शायद गलत लिखा है, सौदा मणि होना चाहिए। तो वह यहां पर इस अध्याय में नारद मुनि श्रील व्यासदेव से श्रील व्यासदेव तो शिष्य है, नारद मुनि गुरु महाराज है श्रील व्यासदेव के, और अपने शिष्य को समझा रहे हैं हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाउ आई बिकेम कृष्ण कॉन्शियस, मैं कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ। हमारे बैक टू गॉडहेड मैगजीन में अलग अलग भक्त अपने अनुभव लिखते, मैंने भी एक बार एक एडिशन में मेरा भी एक आर्टिकल आते ही रहते हैं, मैं कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ। तो नारद मुनि अपनी जीवन की कहानी कहिए, अपना संक्षिप्त जीवन चरित्र सुना रहे हैं, और यहां तो फिर मेरी मृत्यु जब हुई तो कैसी हुई और उस समय मेरी मन की स्थिति कैसे रही, ये बात भी सुना रहे हैं। फ्रॉम ओम्ब टू टूम्ब कह रहे हैं, गर्भ से गर्भाधान संस्कार से फिर अंतिम संस्कार तक का उन्होंने अपना जीवन चरित्र सुनाया है। तो मृत्यु कैसे आई और मृत्यु जब हुई तो फिर क्या हुआ, ये बात इस श्लोक में है। इसके पहले की बातें पहले के श्लोकों में कही गई है, आगे की बातें आगे के श्लोकों में कहेंगे। आज का तो एक ही वचन पूरे जीवन चरित्र का एक छोटा सा अंग कहो, एक वचन कहो जो वैसे महत्वपूर्ण है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, क्या हुआ हा? ऑफेंस, ट्वेल्थ ऑफेंस, अच्छा हुआ। लेकिन जो बात इस श्लोक में कह रहे हैं आज का जो वचन, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति हम भागवत का श्रवण करते हैं, करना चाहिए। भागवत में भी कहा है श्रील प्रभुपाद वैसी व्यवस्था किए है अपने इस्कॉन के मंदिरों में उनके अनुयायियों के लिए, नित्यम भागवत सेवया। तो आज का जो श्लोक वचन है एक तो वचन नारद मुनि कह रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। आज हम किसका प्रवचन सुन रहे हैं, नारद जी का प्रवचन सुन रहे। है तो बात काफी पुरानी, लेकिन पुराण मतलब क्या होता है, पुराणम अपि नवम। बातें है तो पुरानी, लेकिन पुरानी होते हुए भी नवम, पुराणम अपि नवम, ये पुराणों की परिभाषा हो गई। यानी कि पुराण मतलब पुराना हो गया, पुराना मतलब ओल्ड, इट्स ओल्ड मैटर, ओल्ड हिस्ट्री। ऐसा नहीं है, है ओल्ड हिस्ट्री, बट ओल्ड इज गोल्ड कहो, वही पुराना तो है लेकिन उसका ही अधिक मूल्य है क्योंकि पुराना, लेकिन उसका मूल्य उतना ही है, उसकी कीमत उतनी ही है जितनी उस समय थी, उसकी वैल्यू, उसका रेलेवेंस आज भी उतना ही है जितना उस समय था। इसीलिए इसको भागवत में इसका समावेश किया गया है ताकि सदा के लिए लोग, भक्त, साधक इसको पढ़ के इसके से कुछ सीख सकते हैं, कुछ स्फूर्ति ले सकते हैं, तो पुरानी बातें पुराणों में जो है वो निकम्मी नहीं हो जाती, इट्स नॉट ओल्ड एंड यूजलेस, आज भी यूजफुल। तो नारद मुनि कह रहे हैं और मेरी मृत्यु तो हो गई। वैसे नारद मुनि के दो तीन लाइफ टाइम्स रहे, जीवन रहे, तो वैसे पिछले जीवन अब बात तो कर रहे हैं, तो लास्ट लाइफ में मेरा लास्ट लाइफ कैसा रहा, इसके पूर्व का जीवन का चरित्र सुना रहे हैं। तो उस जीवन में, जीवन के अंत में मेरी जब मृत्यु हुई तो शरीर तो मृत्यु होना तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मृत्यु तो होती ही रहती है, लेकिन मृत्यु मेरी कैसी हुई, उसी समय मैं मुक्त हो गया। मैं भक्त हो गया, भगवान को प्राप्त किया मैंने, तो उस समय मेरी मति कैसी थी, मेरी बुद्धि कैसी थी, कैसे विचार थे मेरे मृत्यु के समय, उसको भी समझा रहे हैं नारद मुनि यहां। एवं कृष्ण मते, मेरी मति किनमें थी, कृष्णे मति रस्तु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कहा करते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहा करते थे, आशीर्वाद दीजिए, प्लीज ब्लेस अस, कहते कृष्णे मति रस्तु। कृष्णे मतलब कृष्ण में, कृष्णे संस्कृत में जब आएगा कृष्णे तो, या रामे मतलब क्या समझना चाहिए, राम में, कृष्ण में, इन कृष्णा, तो कृष्णे कृष्ण में मति, मति मतलब मति बुद्धि, हमारा भाव कृष्णे मति अस्तु, अस्तु मतलब रहो, रहे, रहना, तो तुम्हारी मति बुद्धि दिमाग किसमें रहे, कृष्ण में। तो मेरी बुद्धि कृष्ण में थी। कृष्ण मते ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, श्रील व्यासदेव, अनासक्तस्य अमलात्मनः, और मेरा दिमाग में कैसी सोच थी, थी उस समय, अनासक्त समय। इस संसार की किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में आसक्त नहीं था, अमल आत्मनः। और मेरी आत्मा, आत्मा की जो चेतना है, आत्मा की जो भावना है, कैसी थी? अमल आत्मनः, अमल, मल मतलब मल, मलमूत्र भी होता है, मतलब कूड़ा करकट भी होता है, गंदगी होती है, मल कीचड़ होता है। तो इस संसार का कीचड़, संसार का मल, संसार के जो विषय है, उनसे मैं मुक्त था, अमल आत्मा ना। अरे भावना कैसी थी? अमल, उसमें कोई मल था नहीं था, सर्वोपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल निर्मल या अमल एक ही बात है, नी मतलब नहीं, अ मतलब भी नहीं, तो अमल या निर्मल, मल नहीं, मल नहीं, निर्मल अमल। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, भगवान का भक्त कैसा होता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से, डेजिग्नेशंस, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो भी कई सारी उपाधियां, या अहम और मम से भी मुक्त होता है भगवान का भक्त। इसीलिए फिर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम हुआ और अमल आत्मना। तो जिस आत्मा में, आत्मा की भावना में, चेतना में कोई मल नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, तो मेरी मन की स्थिति ऐसी ही थी। और मेरा मन पूरा भगवान में, एवं कृष्ण मते, कृष्ण में मेरी मति लगी हुई थी। तब इतने में क्या हुआ? कालः प्रादुर्भूत काले, वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई, मृत्यु पहुंचा। और मेरी मृत्यु हो भी गई और फिर शरीर तो पीछे रह गया, और मैं, मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में मैं स्थित होके भगवान को मैंने प्राप्त किया। तो अंते अंते नारायण स्मृति, राजा परीक्षित को भी कहा गया था, देखो राजा, जीवन का लक्ष्य क्या है? अंते, अंते मतलब अंतिम क्षण में क्या करना है? अंते नारायण स्मृति, अंतिम क्षण में तुमने नारायण का स्मरण किया तो तुम्हारा जीवन सक्सेस हो, तुम्हारा जीवन यशस्वी हो। अंते नारायण स्मृति, तो क्या करना चाहिए फिर अंते नारायण स्मृति के लिए? स्मृति किसका फल है? श्रवण और कीर्तन का। हरे कृष्ण हरे राम राम राम, ये फल किसका है? श्रवण कीर्तन का फल है, स्मरण। तो फिर राजा परीक्षित को कहा, सुनो, आपके कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? 7 दिन बचे हैं। आप 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी, हम सभी लोगों की मृत्यु कितने दिन में होने वाली है? 7 दिनों में होगी, जानते हो आप। कोई मंडे को मरेगा या कोई वेनसडे को, कोई संडे को मर सकता है, लेकिन हॉलीडे है मतलब मरेंगे नहीं। तो 7 दिन में सारे मर जाते हैं। तो सातों दिन क्या करो? कथा सुनाओ, तो फिर कभी भी नहीं मरेंगे। मंडे को नहीं मरेंगे, संडे को नहीं मरेंगे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे नहीं नहीं मरेंगे। शरीर तो अलग हो जाएगा, शरीर का हम लोग मुक्त होंगे। अंते नारायण स्मृति ही, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति था, उसने नारायण का स्मरण नहीं किया, कोका कोला का स्मरण आप जानते हैं। उसकी मृत्यु होने जा रही थी तो सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे थे, सारे बच्चे भी थे, देख समझ रहे थे कि अब डैडी की कोई 2-4 सांस ही बाकी है, तो लेकिन डैडी कोका कोला मांग रहे थे, बड़ी कोका कोला। तो बच्चे कह रहे थे डैडी डैडी, ये थोड़े शंकर के भक्त थे, कम से कम भोला तो कहो। लेकिन डैडी ने कहा कोका कोला। यू हैव वन मोर ब्रेथ टू गो डैडी, केवल एक ही सांस बाकी है, अब तो कहो भोला। लेकिन डैडी ने कोका कोला कह के कहा गए होंगे कोका कोला लोक। तो कहा अंते नारायण स्मृति ही, और कहा नारद मुनि एवं कृष्ण मते, कृष्ण में मति, और कहा तो क्यों किसी को कोका कोला का स्मरण आता है और किसी को कृष्ण का स्मरण आता है, ये डिफरेंस क्यों? साम संगस्तेषु उपजायते। तो गीता में भगवान कहे हैं जिसका हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम, अर्थात को या तो सांसारिक भौतिक लौकिक लोगों की बात हुई है, तो भगवान ने कहा कि लोग संसार के विषयों का ध्यान करते हैं तो फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान, विषय संसार के विषय, पुंसाम लोग संसार के विषयों का ध्यान करते तो होता क्या है? संगह तेषु उपजायते, इसको समझना होगा, कोई कठिन तो नहीं है। संगह मतलब आसक्ति, आसक्ति होती है उनमें, उन विषयों में जिसका हम ध्यान करते हैं। वेरी सिंपल, जिसका भी हम ध्यान करेंगे, जिस विषय का ध्यान करेंगे, ध्यान करते 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 व्यक्ति उस विषय में, उस व्यक्ति में, उस स्थान में, उस घर में, इसमें उसमें क्या होता है? आसक्त हो जाता है। बस यही होता है, फिर आगे और भी प्रक्रिया जरूर होती है। ये तो प्रारंभ हुआ, यहां से श्री गणेश हुआ गया, श्री गणेश मतलब बिगिनिंग। तो संगस्तेषु बजाय संगा संजायते कामः,
ऐसी आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती, काम वासना, और फिर कामात क्रोधो भी जायते, और काम वासना की जब तृप्ति नहीं होती है तो फिर कामात क्रोधो भी जायते, काम से उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है तब क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, व्यक्ति मोहित होता है, बिविल्डर्ड, भ्रमित होता है, सम्मोहात बुद्धि नाशो, फिर बुद्धि नाश होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। दिमाग का काम क्या है, सद असद विवेक, ये बुद्धि का काम है, ये सत है ये असत है, ये लाभ की चीज है इसमें हानि है, गुड बैड पाप पुण्य शरीर आत्मा, ये जो सत असत, एक असत मतलब झूठ कहो या मायावी कहो, सत मतलब शाश्वत कहो, मूल्यवान कहो, कीमती कहो, ये जो अंतर सद असत विवेक, ये बुद्धि का काम है। तो फिर कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध से बुद्धि संभ्रमित होती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर सम्मोहात बुद्धि नाशो, फिर धीरे धीरे बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि व्यक्ति बुद्धू हो गया, बुद्धिहीन हो गया, और फिर फाइनल स्टेप क्या है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश होने पर प्रणश्यति, इसका नश्यति नाश, केवल नाश ही नहीं होता, प्रणश्यति विशेष प्रकार से उसका नाश होगा। तो क्विकली यही जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कहां से शुरुआत हुई, ध्यायतो विषयान पुंसाम, यहां से शुरुआत हो गई, और अंत कहां हुआ, विनाश हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, नीचे उसका पतन हुआ, व्यक्ति का, व्यक्ति गिरता गया, फंसता गया संसार में, कहां से, ध्यायतो विषयान पुंसाम। तो हुआ तो ये एक हुआ, लेकिन विषयों के स्थान पर, विषय विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, हमारी इंद्रिया है और संसार में विषय है, शरीर में है इंद्रिया, या वैसे इंद्रियों से ही शरीर बन चुका है, अधिकतर शरीर में क्या है, इंद्रिय है, एक तो स्केलेटन हड्डी का एक ढांचा है और मांस है, सीमेंट वगैरह ऐसा होता है बिल्डिंग में, जैसे शरीर को बिल्डिंग भी कहा है, और दीज आर बीम्स, और या सारा फिक्स किया है, कुछ वायर्स होती है, स्क्रूज नट्स एंड बोल्ट्स, that can function. So basically the skeleton है, हड्डी है, मांस है, और फिर उसको mounting हुआ है, attached क्या है, हड्डी वगैरह का ज्यादा उपयोग नहीं है, है कि नहीं पता भी नहीं होता हमको, अंदर है कहीं, लेकिन हमारा मतलब क्या होता है, हमारी आंखें है, हमारा कान है, नासिका है, senses. बेसिकली सेंसेस के लिए फिर कहा, यहाँ हियरिंग का अटैच फिक्स किया है, देखने के लिए, और नासिका है, फिर वर्किंग सेंसेस भी है, हाथ भी एक सेंस है, कर्मेंद्रिया, तो कुछ कर्मेंद्रिया है, कुछ ज्ञान इंद्रिया है, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, और मन षष्ठान इंद्रिया, छठवां इंद्रिय मन भी है, कुल 11 इंद्रिय है, वैसे ही इनको फिक्स करने के लिए वैसे ये शरीर है। तो किस इंद्रिय को कहां रख दिया, किस इंद्रिय को कहां रख दिया, तो उसे हो गया शरीर। तो हम कह रहे थे कि तो शरीर में है इंद्रिय और संसार में है विषय, सारा संसार विषयों से भरा हुआ है और हमारे शरीर इंद्रियों से भरा हुआ है और इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तो संसार में रूप है, आंखें नहीं होती तो हम लोग देखते नहीं रूपों को, कान नहीं होता तो सुनते नहीं, नासिका नहीं होती तो सूंघते नहीं हम, और ये त्वचा नहीं होती तो स्पर्श नहीं कर सकते, कोई स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार हम लोग इस संसार को समझते हैं या उसका स्वादन करने का प्रयास होता है, फिर आसक्त होते हैं। ओके, यहां तक हम लोग फिर और भी थोड़ा चेंज द टॉपिक, मतलब थोड़ा इसका आध्यात्मिकीकरण कैसे संभव है। तो हमारे इंद्रिया तो है, चेंज क्या करना है, इस संसार के जो विषय है, संसार के विषयों के स्थानों पर हमें भगवान का, भगवान में भी विषय है, ये भगवान का रूप है कि नहीं, भगवान का रूप है कि नहीं। ओके, तो अपने आंखों के लिए भगवान का, भगवान का रूप विषय बना दो, आंखों का विषय भगवान का रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञान होता है इंद्रियों से। तो रूप का ज्ञान होता है आंखों से, तो भगवान का रूप बनाओ आंखों का विषय। कानों का विषय क्या है, कान सुनते हैं, संसार के शब्दों को सुनते हैं और सुन सुन के आसक्त हो जाते हैं, तो कानों को भगवान का नाम कान का विषय अगर बन सकता है। या जैसे इस समय हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भी हो गया कृष्ण टॉपिक, हो गए हमारे कानों का विषय बन गया ये भागवत और सारा इतिहास, नारद मुनि का वचन प्रवचन, कितने हजार वर्ष पूर्व कहा हुआ वो प्रवचन या वो संवाद संभाषण आज हम मॉरिशस में बैठ के सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे कान, मानो बद्रिक आश्रम तक कान पहुंच गए हमारे, संवाद तो वहां हो रहा था लेकिन उसको थोड़ा बृहद मृदंग बना दिया, वहां जो ध्वनित हुए शब्द वो संवाद उसको ग्रंथ में रचित किया, रचा और फिर पहुंचा दिया, तो बृहद मृदंग हो गया। और यहां तक यहां हम सुन रहे हैं वो ध्वनि वो संवाद, तो हमारे कानों का, कानों के लिए वो आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनावृत्ति शब्दात, इसको थोड़ा विस्तारित करते हुए हम कह सकते हैं कि ये विषय, ये भगवान का जो टॉपिक है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये गीता भागवत अनावृत्ति शब्दात। तो क्या संभव है, वेदांत सूत्र में कहा है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, पुनः अना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है अनावृत्ति शब्दात, शब्द सुनने से, शब्द पर ब्रह्म, वेद पुराण गीता भागवत की जो शब्द है इसके श्रवण से क्या होगा, क्या होगा? सुनो तो सही, कुछ नहीं, लोग नहीं सुन रहे, इसलिए ताली पीटना पड़ रहा है। तो इसके श्रवण से, इन शब्दों के श्रवण से अनावृत्ति शब्दात, ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति की अनावृत्ति मतलब नो मोर रिपीटेशन, इसीलिए अन का अन आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन और अन मतलब नहीं क्रॉस। ये जो पुनरपि जननम मरणम है उसको पूरा क्रॉस, स्टॉप, फुल स्टॉप, नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ। ये कैसे होगा? शब्दात, केवल शब्द से, केवल शब्द से यह संभव है। तुम्हारे पास जो पावरफुल वेपन है मृत्यु के साथ टकराने के लिए या जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए, सबसे अधिक वैसे शक्तिशाली जो साधन है वो क्या है? शब्द है, शब्द। और वो कौन सा शब्द है? भागवत के शब्द है, गीता के मतलब भगवान के शब्द है। और फिर उन सारे शब्दों को, मंत्रों को फिर एक मंत्र में भी कहा जा सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे हमारे बंधन का कारण इस ये संसार है, या फिर इस संसार के वैसे जो शब्द है, इस संसार के जो शब्द है, इस संसार की जो कथाएं बातें, ग्राम कथा, दिस दैट पॉलिटिक्स एंड व्हाट नॉट जो है, ये हमें बंधन में डालता है। सबसे अधिक हम प्रभावित किससे होते हैं? शब्दों से होते हैं। वैसे स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हम शब्दों से होते हैं। किसी के बातों में हम आ जाते हैं, हमारी ठगाई होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ षड्यंत्र रचा और कुछ कहा, तो इस संसार के शब्द जो हमारे बंधन के कारण है, इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, हमारे बंधन का कारण शब्द है तो मुक्ति का कारण भी शब्द ही। गेट दैट? समझ रहे? तो संसार का जो बंधन है शब्द के कारण, और भी कारण है लेकिन मुख्य अधिक मुख्य प्रभावशाली कारण तो शब्द है। तो फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, हमें ऐसे शब्द दिए हैं जिसको हम ग्रहण करेंगे तो उन शब्दों की मदद से हम मुक्त हो सकते हैं। ओके, गोइंग बैक, भगवान के जो वचन है, ध्यायतो विषयान् पुंसाम्। तो अगर हम हमारे के आंखों का हुआ, आंखों का विषय हम बनाएंगे भगवान का, भगवान का रूप, हमारे कानों के लिए शब्द, भगवान के शब्द, नासिका के लिए भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प है, गंध है, इत्र है, चार कुमार आ गए भगवान के दर्शन के लिए, चार कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो प्रवेश द्वार पर ही उन्होंने सूंघ लिया, भगवान को अर्पित की हुई तुलसी और गंधा
पुष्प, उसका सुगंध,
उसे प्रभावित हो गए, मुक्त हो गए, भक्त हो गए। केवल लो भगवान को अर्पित की हुई तुलसी मंजरी और गंध उसको सूंघ लिए, उसके प्रभाव से मुक्त हो गए, भक्त हो गए। वैसे मुक्त थे, वैसे ब्रह्मवादी या निर्गुण निराकारवादी थे, लेकिन कृष्ण भक्त हो गए, आसक्त हो गए भगवान से। ओके, तो संसार के विषयों का ध्यान करेंगे तो हम किससे आसक्त, किससे आसक्त होते हैं? बोलो, संसार से आसक्त होंगे। हमने ध्यान किया संसार के विषयों का तो हम आसक्त होते, आसक्त समझ, आसक्त आकर्षित होते हैं संसार की तरफ, संसार के विषयों की तरफ। तो ये तो विषयों का परिवर्तन अगर हम करते हैं तो मायावी जो विषय है, भौतिक या लौकिक विषयों के स्थान पर भगवान का विषय बनाएंगे, भगवान का रूप को देखेंगे, भगवान के शब्दों को, नाम को सुनेंगे, भगवान के सुगंध, वैसे भगवान का अंग भी सुगंधित होता है, आपको पता है ना। तो भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी और गंध पुष्प, वो तो सुगंधित होते ही है, वैसे भगवान का अंग भी सुगंधित होता है। वेरी फ्रेग्रेंट भगवान का अंग। हमारे अंग तो कैसे होते हैं, आप जानते हो, इसमें दुर्गंध है, फिर बहुत स्नान करना पड़ता है, क्या क्या, एक गेट साफ करो, वही गेट साफ करो, तो उठते ही पहले क्या करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, दिन में भी करनी पड़ती है। इससे ये भी समझ सकते हैं अंदर क्या है जो बाहर निकलता रहता है। तो उस दुर्गंध को छिपाने दबाने के लिए हम लोग ऊपर से पाउडर और क्या क्या फेंकते रहते हैं, हा? और कभी कभी हम लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं औरों के लिए, माय बॉडी इज आल्सो वेरी फ्रेग्रेंट, सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लगी हुई है, तो हम एक दूसरों के शरीर सुगंधित बनाते हैं, और जैसे सुअर सूंघते हुए जाता है, खोजते हुए जाता है, तो स्त्री पुरुष भी भ्रम उत्पन्न करा के, हाँ मेरा शरीर भी तो कम सुगंधित नहीं है, और फिर हम लोग और मोहित होते और आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वैसे भगवान का जो शरीर है, रूप है, नेचुरली सुगंधित है। ये नहीं कि भगवान जब सुगंधित पुष्प की माला पहनते हैं या कुछ लगा दिया उन्होंने तब सुगंधित नहीं, तो भगवान का हाथ भी लोटस हैंड, भगवान का हाथ कैसा है, कमल सदृश है, करक तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो भगवान का हाथ कहा है कमल जैसा, क्यों कहा, कमल जैसा कोमल भी है, जैसे कमल कोमल होता है तो भगवान का हाथ कोमल होता है। कमल के पुष्प में लालिमा होती है तो भगवान के तलवे है वो भी लाल है, उस कमल के पुष्प में सुगंध होता है तो भगवान का हाथ सूंघ लो सुगंधित है। इसीलिए भी भगवान के हाथों को कर कमल कहते हैं, लोटस हैंड, लोटस फीट आल्सो, सेवन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सात भगवान के शरीर के सात अंग
कमल सदृश है, कमल जैसे है। तो हम अगर भगवान का रूप, भगवान का नाम और जीवा के लिए, कि जीवा के लिए क्या करेंगे, कृष्ण प्रसाद है उसको ग्रहण करेंगे, ये बच गया, आंखों के लिए दर्शन करेंगे, स्पर्श भी कर सकते हैं, भगवान के विग्रह के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, या भगवान के वैसे भक्तों के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं, या सेवा में हम स्पर्श करते हैं, मंदिर मार्जनादो, मंदिर का मार्जन करते हैं, स्पर्श हो रहा है, मृदंग बजा रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, तो वो स्पर्श भी, तो क्या होगा, हम लोग किसमें आसक्त होंगे, हमारे इंद्रिय अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते, भक्ति की परिभाषा भी है, भक्ति क्या है, हमारी इंद्रिय जो भगवान की सेवा में, भगवान की इंद्रियों की सेवा में हम लगाएंगे, उसी का नाम है भक्ति। तो संसार के लोग जब संसार के विषयों का ध्यान करते उसमें आसक्त होते हैं, तो कृष्ण भक्त विषय में परिवर्तन करता है, इस संसार के विषयों के स्थान पर भगवान को बिठाता है, भगवान को बीच में लाता है, तो वही होगा, क्या होगा, वो भी आसक्त होगा। भौतिक व्यक्ति संसार में आसक्त हो रहा था, माया में आसक्त हो रहा था, और कृष्ण भक्त कृष्ण भगवान के को विषय बना रहा है, तो किसमें आसक्त होगा, कृष्ण में आसक्त होगा। ओके, तो फिर आसक्ति के बाद क्या हुआ, संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा, वहां जो भौतिक लोग है जब आसक्त होते, आसक्ति से क्या होता है, उसमें काम वासना उत्पन्न होती है, तो कृष्ण भक्त का क्या होगा, उसने भगवान को विषय बनाया, भगवान में आसक्त हुआ, उस आसक्ति का परिणाम क्या होगा, वेरी गुड, एटलीस्ट कुछ लोग सही निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं या समझ रहे हैं। तो वो व्यक्ति, संसार के व्यक्ति काम को प्राप्त कर रहा था, और कृष्ण भक्त किसको प्राप्त करेगा, प्रेम को प्राप्त करेगा। लेकिन वहां कहा है कामात क्रोधो भी जायते, काम की तृप्ति नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्रोधी होगा, फिर यहां क्या होगा, प्रेमात क्या होगा, प्रेम से क्या उत्पन्न होगा, वैसे भक्त कभी कभी क्रोध भी कर सकता है। जो विष्णु और वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो क्रोध आएगा कि नहीं, लेकिन वो क्रोध तो वैसे भगवत भगवान में जो प्रेम है उसी को व्यक्त करेगा वो क्रोध। हनुमान में क्रोध आया, वो क्रोध किसका प्रतीक था, हनुमान का राम में जो प्रीति है, राम में जो प्रेम है उसी का प्रतीक था वो क्रोध, रावण के दरबार में तो क्रोध का प्रदर्शन हुआ। ये अर्जुन, वैसे गीता का प्रवचन सुना के भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के क्रोध को जगाया, क्रोध करो ना, नहीं लड़ाई नहीं करूंगा, नो नो लड़ाई, नो आई विल नॉट फाइट, नो नो, भगवान ने प्रवचन, नो गेट लिटिल एंग्री, हैड अ फाइट। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो सारे दुष्ट यहां एकत्रित हुए हैं, उनका संहार मेरी सेवा होगी। तो
तो भगवान का भक्त भी क्रोध कर सकता है, लेकिन वो क्रोध साधारण क्रोध नहीं होगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति जब क्रोध करेगा तो क्या होगा, उसका बुद्धि का क्या होगा, नाश होगा। नाश के पहले पहले नाश तो अंत में है, वो भ्रमित होगा। कामात क्रोधो क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। लेकिन भगवान का जो भक्त है, प्रेम के बाद कुछ भी क्रोध भी कर सकता है, प्रेम भी आगे करेगा, उसको भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रीतिपूर्वकम क्या क्या तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम। वहां तो भगवान उस सांसारिक भौतिक व्यक्ति के दिमाग की चोरी या ले भ्रमित कर रहे थे, उसको घटा रहे थे, उस बुद्धि को दिमाग को। लेकिन यहां भगवान कहते मेरे भक्त को तो मैं क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि दूंगा। सांसारिक व्यक्ति तो बुद्धि को खो बैठेगा, वो बुद्धू होगा, लेकिन मेरे भक्त को मैं बुद्धिमान बनाऊंगा। ददामि बुद्धि योगम, तो वह भौतिक व्यक्ति स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लेकिन यह भगवान कह रहे हैं जब मैं अपने भक्तों को बुद्धि दे दूंगा तो उस बुद्धि का उपयोग वो भक्त करेगा किसके लिए, माम उपयांति थे। उस भक्त को जब बुद्धि मिलेगी तो उस बुद्धि का उपयोग करेगा किसके लिए, माम उपयांति, माम मतलब मेरे मेरी ओर, उप यांति, उप मतलब पास, यांति मतलब जाना, मेरे पास जाने के लिए या मेरे पास आने के लिए उस बुद्धि का उपयोग करेगा। तो विनश्यति नहीं है, माम उपयांति या त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, मेरे पास मेरे धाम में लौटेगा। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, ह्यूज डिफरेंस। ध्यान ही तो दोनों भी ध्यान कर रहे हैं, एक ध्याय तो विषयान पुंसा और दूसरा कृष्ण कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। एक को काम मिल रहा है, दूसरे को प्रेम मिल रहा है, एक के बुद्धि का बुद्धि भ्रमित हो रही है, दूसरे को उसका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, और एक का विनाश हो गया, नरक में पहुंच गया और दूसरा पहुंच गया भगवान के धाम, जैसे नारद मुनि पहुंचे।
नारद मुनि कृष्ण कॉन्शियस थे तो उनका विनाशक्तस्य अमलात्मनः, हनुमान भी हनुमान के अपना सीना फाड़ के दिखाए, छाती फाड़ के दिखाए। कौन थे अंदर, फिर बंबई में हमने एक जवान को देखा, उसने भी अपनी छाती फाड़ के दिखाए, चित्र था। तो हमने जब देखा तो उसके दिल में तो लिमका बॉटल। So that's the difference. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तभी कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित होने की सारी विधि विधान शास्त्र के आधार पर, गीता भागवत आधार है, साधु शास्त्र आचार्य श्रील प्रभुपाद कृपा किए, हम सारे संसार के ऊपर कृपा रही श्रील प्रभुपाद की। और ये सारा मार्ग भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग उन्होंने खोल दिया ताकि जो भी कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, कृष्ण बलराम मंदिर तक पहुंच जाएंगे, कृष्ण बलराम के चरणों में पहुंच जाएंगे। तो आप तो इस मार्ग पर हो ही, आगे बढ़ते रहो और औरों को भी प्रेरित करो ज्वाइन करने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए। ओके, टाइम इज गेटिंग ओवर। कोई प्रश्न है? लोहा जब अग्नि में होता है तो लाल हो जाता है अग्नि के संपर्क से, और केवल लाल दिखाई ही नहीं देता, वो अग्नि जैसा कार्य भी करता है। लोहे को अग्नि से बाहर करो, इस चिमटे से उठाओ और लकड़ी से अगर स्पर्श कराओगे तो अग्नि जैसा कार्य करता है। तो अग्नि के संपर्क में संसर्ग में आने से लोहा जैसा अग्नि का कार्य करता है, अग्नि बनता है। तो श्री प्रभुपाद यह समझाए हैं कि भगवान का भक्त इस ज्ञानाग्नि भी है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करोति तथा। तो ज्ञानाग्नि या भक्ति की अग्नि, भक्ति का भाव, इसमें जब लगा रहता है, उसकी आत्मा लगी रहती है, तो उसका उस व्यक्ति का, उस महात्मा का शरीर भी साधारण नहीं रहता, साधारण नहीं समझना चाहिए। वो भक्ति के वातावरण में, भक्ति या ज्ञान के अग्नि के संपर्क में आने से वो शरीर भी साधारण नहीं है। इसीलिए उसका भी सम्मान करते हैं हम, और इसीलिए इस औरों के शरीर का दाह संस्कार होता है तो उनको समाधि में समाधिस्थ करते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है? समथिंग ओके, लेट्स टॉक मोर। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय।
कृष्णा।